अब यहां से आप देखिए कि वो वक्त शुरू हो रहा है कि जो किबले की तब्दीली से पहले का था। बड़े गौर से सुनने की आयत है, लंबी है और इस एक आयत में कई जमाने हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। कैसे? कद नरा, बेशक हम देखते हैं, तकल्लुब वजही का फिस समाई, आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना। ये बताइए ऐसा कब हुआ होगा, ये कब की बात है? उन 16-17 महीनों के दौरान की बात है। अल्लाह प्यार से नबी को कह रहे हैं, हम आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना देखते हैं। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के नबी आसमान की तरफ क्यों उठाते थे? दुआ के लिए। ये हिस्सा एक बहुत बड़ा इस्लामिक अकीदा है जिसकी दलील में पेश करते हैं उलमाए कराम कि अल्लाह ताला आसमान पे है। आज एक बहुत बड़ा शोशा ये भी है ना कि अल्लाह हर तरफ है, आगे भी, पीछे भी, अंदर भी, बाहर। वजी का फिस्समा, अल्लाह आसमान पे है। ये आयत का हिस्सा उसकी दलील है, लिखना चाहे तो लिख लें। खैर, फलनुवल्लियन्ना का, फिक्र ना करें, हम आपको उस तरफ फेर देंगे। किस तरफ? क़िबलतन तरदाहा, उस किबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं। इतने हिस्से को पढ़ के जो मेरे जहन में, इमेजिनेशन में आता है ना, वो क्या है कि आपका बच्चा आपके पीछे लगा हुआ है, कोई पार्क है जहां बच्चे जाना चाहते हैं। अब आपका बच्चा रोज उठ के जिद करता है, मुझे वहां ले जाए, मुझे ले जाए। तो आप क्या कहते हैं? बेटा ले जाऊंगा वीकेंड पे। आपको बच्चे का वो जिद करना भी प्यारा लगता है। बिल्कुल यही अंदाज है। अल्लाह कह रहे हमें पता है आप जाना चाहते हो उधर, लेकिन थोड़ी देर, थोड़ी और। फलनुवल्लियन्ना का क़िबलतन तरदाहा, हम आपको आपकी पसंदीदा जगह पे ले जाएंगे। अब यहां तक बात खत्म हुई, लिख ले। ये 16-17 महीने के दौरान की बात थी। फवल्ली वच्छे का, इसको बड़ा बड़ा हाईलाइट कर ले, ये है हुक्म के लफ्ज़। अब बताएं, अगर आप इन आयतों को नहीं देख रहे तो आप कैसे समझेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं? किबले की तब्दीली का हुक्म अब आ रहा है। फवल्ली वच्छे का, पस फेर लीजिए अपने चेहरे को शत्रुल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ। इसको हाईलाइट करें। अगर आपसे कल कोई पूछे कि इस रुकू में से वो हुक्म के लफ्ज़ बताइए जिसकी बुनियाद पे बैतुल मकदस की बजाय बैतुल्लाह किबला बना, तो ये लफ्ज़ है फावल्ली, अमर है, डूज है, डू इट, फेरो अपना मुंह किधर? वजह का शतरुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। अच्छा, जैसे मैंने खुलासे में जिक्र कर दिया था कि बैतुल मकदस की तरफ मुंह करने का हुक्म कहीं नहीं है कुरान में, ये नहीं कहीं आएगा कि फवल्ली वजह का शतरल बैतुल मकदस, तो वो थी वही खफी, आपके दिल में डाल दिया गया। ठीक है, अच्छा, यहां अब आपको तो नहीं पता चलेगा लेकिन मैं लिखाऊंगी तो आप लिखते जाइए। वजह का फवल्ली ये वाहिद है, ये हुक्म सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। फवल्ली, बस तुम एक फेर दो वजह का अपने चेहरे को किधर? शत्रल मस्जिद हराम, जिधर मस्जिद हराम है। इस हुक्म के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा तो बदलना था। आगे चलिए, वह हैसु मा कुंतुम, और जिधर भी तुम सब हो। देखिए, मा कुंता वाहिद है, मा कुंतुम सब है, और जिधर भी तुम सब हो फवल्लू, ये आ गया जमा का हुक्म। अब सहाबा को हुक्म दिया गया, जिधर भी तुम सब होगे बस फेर लो वुजूहकुम शत्र, हो अपने चेहरों को उसकी तरफ। हु से क्या मुराद है? बैतुल्ला, बैतुल्ला की तरफ फेर लो। इतनी बात क्लियर है? पहले हुक्म सिर्फ नबी को आया और अगली आयत में नबी सल्लम के सहाबा को भी हुक्म दे दिया गया। चलिए, ये बात हुई, इस दौरान आपका रुख बदला गया। आप सिर्फ ना के खुद बदले, सहाबा ने किसी लफ्ज को सुने बगैर खुद भी मुंह उधर कर लिए। आज सोचिए हम होते तो क्या होता, वो मस्जिद ही दो गिरोहों में भर चुकी होती, आपस में लड़ते। अभी मैं आपके सामने ईद की पार्टी की कोई बात छेड़ू ना तो आपकी ये क्लास इतने सुकून में नहीं रहेगी, दो गिरोह हो जाएंगे। कोई कहेंगे 2 बजे छुट्टी करें, कोई कहेगा 1 बजे छुट्टी करो, कोई कुछ, कोई कुछ। हम मुसलमान आज छोटी छोटी बातों पे इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि असल हुक्म को छोड़कर हम मुतफरिक हो जाते हैं। अगर सहाबा का भी ऐसा ही मिजाज होता तो वो मस्जिद उस वक्त अखाड़ा बन रही होती, कुछ मुड़ जाते, कुछ ना मुड़ते, किसी के पाँव होते, किसी की जूतियाँ होती, किसी की कुछ होते, और आप इस वक्त ऐसे मामलात में पड़ जाते। यहाँ से सीखिए, ये है इत्तबा। बंदा मोमिन का दिल कंपस की तरह, पुरकार होती है ना, कंपस को बीच में रख के ना उसके इर्द गिर्द दायरे छोटे खींचे या बड़े, हर दायरा एक सिमत में आता है। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की मोहब्बत को आप अपना फोकल पॉइंट बना लें, मरकजी नुक्ता। बंदा है मोमिन यूँ घूमता है, अल्लाह ने कहा ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, जिधर कहेंगे उधर कर लूँगा। और सहाबा इसमें जीत गए, कामयाब हो गए। सन 2 हिजरी में यह हुक्म नाजिल हो रहा है और मुसलमान इसमें आ गए। क्या पता चला कि एक इंसान जब अल्लाह का हुक्म सुने तो ये ना कहे कि पहले हिकमत बताओ। अब अगर सहाबा वहां हिकमत में पूछते, नमाज टूट जाती ना। वजह पूछते, हाय इसका रिएक्शन क्या होगा, हाय मेरे घर वाले इस पे क्या कहेंगे। तो वही लोग दीन के कामों में आगे जाते हैं जो कुरान की क्लास में फैसले करते हैं। ये नहीं कहते अच्छा जरा घर वालों से मशवरा कर लूं, फैसला कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं, ये नहीं करते, बस चल पड़ते हैं। जो अल्लाह ने कहा, जिधर कहा, चल पड़े। और अल्लाह सुबहान तआला इस काम के ऊपर उनको लेके चला गया। खैर अब क्या हुआ, किबले की तब्दीली जो थी ना, यहूद के ऊपर एक बड़ी गहरी चोट थी। समझ लीजिए, फिर अगला हिस्सा पढ़ूंगी आयत का। यहूद की किताबों में यानी तौरात में ये बात लिखी हुई थी कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा। ठीक है, ये उनकी किताबों में लिखा था। किबले की तब्दीली का होना यहूद के दिल पे चोट डाल गया कि एक और निशानी पूरी हो गई कि यही वो नबी है जिसके आने की बातें की गई थी। उसकी तरफ अब इशारा है, वह इन्नल्लज़ीना ओतुल किताब। देखिए पिछली आयत, आयत का शुरू जो था ना माजी से था, फवल्ली वजह का हाल है और आखिरी हिस्सा मुस्तकबिल को पेश कर रहा है कि वह इन्नल्लज़ीना ओतुल किताबा, बेशक वो लोग जो अहले किताब है, लयालमूना, अलबत्ता जरूर जानते हैं, श्योर शॉट क्या, अन्नहुल हक मे रब्बी हैं, बेशक ये हक है उनके रब की तरफ से। क्या हक है, लिखिए इसके नीचे 3 बातें। ये किबले की तब्दीली का हुक्म हक है क्योंकि उनकी किताबों में लिखा था कि इस नबी का किबला बैतुल्ला होगा। इसी तरह हु की जमीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाती है कि ये रसूल हक है क्योंकि उनकी किताबों में तस्करा था। और तीसरा हु से मुराद कुरान या वही, कि ये कुरान भी सच है, ये नबी भी सच है और किबले की तब्दीली का हुक्म बता रहा है कि वाकई अल्लाह ताला ने जो बात यहूद की किताबों में कही थी वो सच हो गई। और मिर रब्बिहिम, रब की तरफ से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं किया। और आखिर में एक हल्की सी डांट, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह बिल्कुल गाफिल नहीं है उससे जो के ये लोग कर रहे थे। यहूद की तरफ इशारा है, उनको पता था कि अल्लाह के नबी के साथ ये जो मामला हो रहा है ये असल में हमारी इमामत छिन रही है, ये अब इक्तदार पलटा जा रहा है। दिल में उनके बहुत ज्यादा सांप लौट रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला को दिलों में उठने वाले ख्यालात और वसवसे सारे के सारे पता चल रहे थे कि फिक्र ना करो, ये बात तो होने थी, होके रही। अब हुआ क्या, अल्लाह के नबी को जब पता चला कि इनकी किताबों में ये था कि बैतुल्ला आखिरी नबी का किबला, तो आपके दिल में ख्वाहिश क्या आई होगी, सोचिए जरा। अभी मैं सिर्फ ये पूरी आयतों को एक साथ करूंगी क्योंकि इसमें साइड में छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो बीच में रखूंगी तो आपको ये मजमून फिर थोड़ा सा शुबा डालेगा। साथ चल रहा है आपका जहन मेरे। अब तौरात की एक निशानी पूरी हुई, क्या क्या आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा, हो गई। तो इसके साथ अल्लाह के नबी के दिल में क्या ख्वाहिश आई होगी, क्या अब ये अहले किताब मुसलमान हो जाएं। क्योंकि एक और निशानी पूरी हुई तो अल्लाह ताला उसके जवाब में आयत 145 में कहते हैं, वलैन अतैतल्लज़ीन उतुल किताब, अगर आप इन अहले किताब को दे दे, बिकुल्ली आयतिन, सारी की सारी निशानियां, मा तभी वो किबला तक, ये फिर भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। क्यों, वजह, दिल में तासुब है। ए नबी, आप तो किबले की तब्दीली के हुक्म से समझ रहे हैं ना कि ईमान ले आएंगे क्योंकि इनकी किताबों की एक बात और सच हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि आप सारी निशानियां भी इनकी किताबों की खोल के दिखा दो, नहीं मानेंगे। वजह तासुब। यहां से देखिए, बास लोग पूरा कुरान पढ़ जाते हैं, दिल नहीं बदलते। दुआ कीजिए हमारे दिल ऐसे ना रहे, दिल में तासुब लेके बैठेंगे ना तो आपको इस किताब से कुछ नहीं मिलेगा। वैक्स लगा के बैठेंगे, किताब का पानी आपके दिल पे जरा भी नरमी नहीं लाएगा और सख्त दिलों के यहां से उठेंगे। इसलिए मानने वाला दिल लेके बैठने की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, आप इनके ईमान की उम्मीद ना रखें, ये नहीं मानेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप यहाँ क्लास में आते हैं ना, हर दिन आपको कोई ऐसी बात लगती है कि जो आपका दिल पिघलाती है। आप घर जाते हैं, अपनी दोस्तों से बातें करते हैं, साथियों से बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सख्त दिली की वजह से, तासुब की वजह से हटे हुए हैं। किसी दिन क्लास में ऐसी बात होती है जो बिल्कुल उनके हालात पे फिट होती है, उनके किसी सवाल का जवाब है। आप यहाँ बैठ के खुश होते हैं, वो अच्छा आज ये बात जाके मैं फोन पे बताऊंगी कि देखो आज तो कुरान में आपके मसले का हल है। और आप क्या सोचते हैं, जो ही आपने उनको ये बताना, उन्होंने कहना चलो कल से फिर मैं भी चलूंगी। नहीं आएंगे, वजह वही आएगा जिसका दिल साफ होगा। कई मजबूरियों में रुके होते हैं, वो बात नहीं होती। आप किसी को बुरा ना सोचे इस वक्त दिल में। मिसाल देने का मकसद ये होता है कि हर बंदे के हालात फर्क होते हैं। कुछ लोग जो किसी तासुब की वजह से रुक जाते हैं ना, दीन से या दुनिया की मोहब्बत से या जिद है ना, ईगो, वो नहीं आते। तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, इनके किबले को ना मानने का गम ना करो, बस एक नियत कर लो कि मैंने भी फिर इनके किबले की नहीं पैरवी करनी, मैंने वापस उस दुनिया के किबलों की तरफ नहीं जाना, मैंने इस किताब को नहीं छोड़ना, पीयर प्रेशर में नहीं आना। ये इस्लाम का मिजाज है। जैसे लोग कहते हैं ना, इंग्लिश का एक मुहावरा है कि इफ़ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम, अगर आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते तो वैसे ही हो जाओ। जैसे आज बहुत सारे मुसलमानों का रवैया है कि सोसाइटी के गलत रस्म और रिवाज को तुम बीट नहीं कर सकते तो वही करने लग जाओ, मजबूरी है, हालात है, क्या करो। ये नहीं करना, आप फिर अपने काम पे पक्के रहें। ये वही बात है जिसको आखिरी पारे में कहा गया कि लकुम दीन नकुम वलियत दीन, तुम जिस दीन की इबादत करते हो मैं उसकी नहीं करता। तो यहां से हमें अमल की बात मिलती है कि गैर मुस्लिम या बेदीन लोग अगर दीन की किसी बात को नहीं मानते तो आप ना उनके प्रेशर में आके छोड़े कि ठीक है फिर मैं भी अपने इस दीन को छोड़ देता हूँ, आप बात पहुँचा दे, नहीं मानते तो ना माने। अच्छा आप देखिए वमा बादहुम बिताबिन क़िबलतबाद, और ना वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करते हैं। अब यहाँ बड़ा खूबसूरत नुक्ता है अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, और वो क्या कि मुसलमानों को और नबी सल्लम को ये लगता था कि यहूद और नसारा दोनों बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करते हैं लेकिन बैतुल्लाह की तरफ नहीं करते, तो दिल में चोट पड़ी। तो अल्लाह ताला तसल्ली दिला रहे हैं कि तुम समझते हो कि ये दोनों बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करते हैं, हालांकि वमा बादहुम बिताबिन क़िबलतबाद, ये तो दोनों भी एक किबले की पैरवी नहीं करते। वो कैसे, बज़ाहर दोनों बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करते थे लेकिन दोनों मुख्तलिफ रुख में करते थे। आप समझिए पहले इस बात को, आप देखिए कि खाना काबा के चारों तरफ तवाफ होता है ना, यहूद और नसारा दोनों जो हैं बैतुल मक़दस की तरफ मुंह तो करते हैं लेकिन दोनों का रुख आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट है। कैसे, ज्यूस जो है ना वो किस तरफ मुंह करते हैं, पीछे बताया था आप में से किसी को याद है? जी, मशरक की तरफ ज्यूस नहीं करते। क्रिश्चियंस जो हैं वो मशरक की सूरत पे करते हैं। आगे सूरत मरियम में इसकी दलील आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि जब बीबी मरियम को दर्दे ज़ै हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया, तो वो बैतुल मक़दस से मशरक़ की तरफ चली गई, बैतुल लहम, वहाँ एक जगह। क्रिश्चियन असल में बैतुल लहम की तरफ मुँह करते हैं, ज्यूज़ जो है वो मगरबी सूरत की तरफ करते हैं। वो उधर सखरा एक जगह पत्थर जहाँ उनके अम्बिया कराम की सवारियाँ बनती थी या कुछ और वजह थी, यानी एक किबले की तरफ होने के बावजूद एक इधर मुंह करके पढ़ते हैं, एक इधर मुंह करके पढ़ते हैं। मतलब यह है कि बज़ाहर तुम्हें लगता है कि ये दोनों आपस में एक साथ हैं लेकिन ये दोनों भी एक साथ नहीं हैं। वो हैकले सुलेमानी भी उधर है मगरिब की तरफ, जिधर जूस नमाज पढ़ते हैं, और नसारा मशरक़ की तरफ पढ़ते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इस गलत फहमी में ना रहें कि ये दोनों आपस में एक है। यही बात आगे सूरत हशर में भी आप पढ़ेंगे कि तख सबुहम जमीयन, तुम गुमान करते हो कि ये दोनों ग्रोह एक है, हालांकि कुलूबुहम शत्ता, इनके दिल तो आपस में फटे हुए हैं। मुराद ये था कि तसल्ली दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें कि ये आपकी तरफ मुंह क्यों नहीं कर रहे, आपके किबले की तरफ ये नहीं आएंगे। वलैन इत्तबअ अहवाअहुम, और अगर आप इनकी ख्वाहिशों की पैरवी करेंगे, मिम बादी मा जाका मिनल इल्मी, उस इल्म के आने के बाद जो आपके पास आ गया, तो इन्नक इज़ल मिनज़ ज़ालिमीन, आप उस वक़्त फिर जालिमों में से होंगे। सख्ती है ना, बज़ाहर खिताब नबी से है लेकिन इशारा नबी की उम्मत है, मैं और आप, कि अब आपको अपने दीन पे फर्म होना चाहिए। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट वे ऑफ लिविंग, आपकी शरीयत पूरी है ठीक है, तदरीजी दौर पे जब इस्लाम अभी आ रहा था, कुछ अहकामात आपको उस दौर के ज्यूस के भी मानने पड़े, उनके तरीकों पे आपको चला दिया गया, लेकिन अब इस्लाम की तस्वीर पूरी हो चुकी, अब आपने उसकी तरफ रहना है। और मुझे ऐसे लगता है कि इसमें हमें बताया जा रहा है कि कुरान पढ़ने से पहले की जिंदगी जैसी थी जैसी थी, अब इल्म आ गया, आगे इल्म मेरे और आपके पास। अब अगर इसके बाद मेरा उठना बैठना खाना पीना पहनना ओढ़ना अगर उन लोगों की तरफ हुआ, तो इन्नक मिनज़ ज़ालिमीन, कितनी बड़ी धमकी उम्मत मुस्लिमा के उन लोगों को जो इस्लाम के आने के बावजूद उन लोगों की तरफ एड़ियां उछाल उछाल के भागते हैं कि किसी तरह हमारा कद उनके बराबर हो जाए। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी, मुराद वही है जो उस वक़्त आपके सामने थे। यारिफूनहू, वो इसको पहचानते हैं, किसको? वही तीन बातें, नबी को, किबले की तब्दीली के हुक्म को, और वही को। क्या? कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं, यानी इनको कोई शक नहीं है कि मोहम्मद सल्लम सच्चे नबी नहीं, अपने बेटों की तरह इनको पहचानते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम एक ज्यू थे, मुस्लिम हुए, उनका एक कॉल किताबों में मिलता है, कहते हैं कि हम अपने सगे बेटों के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये वाकई हमारे ही बेटे हैं, हमें नहीं पता अंदर खाते औरतों ने क्या गुल खिलाए, लेकिन इस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम यकीन से कह सकते हैं ये वही नबी है जिसका तذکرہ हमारी किताबों में है। ये इशारा है, और ये मुहावरा भी है, क्योंकि बंदा हजारों के मजमे में अपने बेटे को पहचान लेता है। तो यहां से पता चलता है कि जिन ज्यूज़ उलमा ने आपको झुटलाया, शक की बुनियाद पे नहीं झुटलाया, तासुब की बुनियाद पे झुटलाया। व इन फरीकम मिनहुम लयक्तुमून अलहक, और इनका एक गिरोह हक को छुपाता है। वहुम यालमून, और वो जानते हैं, यानी जानते बूझते ये हक को छुपाते हैं। बात वाज़े, इनकी किताबों में जो बातें थी, यहां फरीकन से कौन सा फिरका मुराद है? उनके उलमा का गिरोह। आम यहूद ऐसे नहीं होंगे, याद रखिए, जैसे आम मुसलमान सीधे सादे हैं ना। आज जितना मजहबी तासुब है ये बाज़ दफ़ा दीनदार लोगों के बीच में होता है और वहीं से फिर आगे फैलता है। इसी तरह ज्यूज़ के चंद लोगों की वजह से पूरे ज्यूज़ के ऊपर बात आती है, हालांकि सारे ऐसे नहीं है। आज भी अल्लाह कहते हैं कि इनके दीनदारों ने नबी सल्लम की आमद की खबरें छुपाई, जिसकी वजह से लोग इस हक से हटे, तो इसका सारा गुनाह उनके ऊपर होगा। तुम अपने दिल को यकीन रखो कि अल हक मिन रब्बी, का हक वही है जो आपका रब फरमाए। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, बस आप शक की तरफ ना आए, आपके दिल में अपने दीन पे कोई शक ना हो। यहां भी नबी सल्लम को कहकर उम्मत को मुराद दिया गया कि तुम्हें अपनी किताब के ऊपर यकीन होना चाहिए कि ये सच्ची किताब है, इल्हामी किताब है, काबिले अमल है। अपने रसूल पे यकीन होना चाहिए कि ये तुम्हारी जिंदगी को तंग करने नहीं आया। और इसी तरह तुम्हें अपने रब के ऊपर यकीन होना चाहिए कि वो तुम्हें ऐसे हुक्म नहीं देगा जो कि तुम्हारे फायदे के नहीं है। सूरत अल अराफ 157 आयत का तर्जमा आपने अपने नोट्स में खुद लिखना है, जिसमें दलील मिलती है कि यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील, कि ये इस नबी का तज़किरा तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। खैर, व इन्न फरीकम मिनहुम, और इनका एक गिरोह, लयक्तुमून अलहक, का वो हक को छुपाता है। वहुम यालमून, और अनजाने में नहीं करता बल्कि जानते बूझते करता है। यहां से पता चलता है कि दीनदार की पकड़ ज्यादा है, क्योंकि जानते बूझते वो हक से पीछे होता है। कितमाने हक की सजा उनको मिलेगी। आप इसमें शक में ना आए। अल हक मे रब्बी का फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ये जो मुमतरीन है ना, मिरिया से है, इसका रूट आप गलत ना लिखिएगा, मीम रा या रूट होता है इसका। शक में पड़ना, कुलक पैदा करना, जिसको आपके के दिल में बेचैनी पैदा करने वाला शक है। अब ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह सुबहान तआला आयत 148 में क्या फरमाते हैं? वली कुल्लिन विजहतुन, हर एक का एक रुख है। हुवा मुवल्लीहा, वो उसकी तरफ फिरता है। सच है? क्या मतलब है इसका? दो तीन एंगल है। नंबर एक, हर मजहब वाला किसी ना किसी की पूजा कर रहा है। कोई बैतुल्ला की तरफ मुंह करता है, तो कोई बैतुल मकदस की तरफ करता है। तुम क्या करो? बहसों में ना पड़ो, झगड़ों में ना पड़ो, बल्कि फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकियों की तरफ भागो, दौड़ लगा दो। ऐनमा तकूनु यातिबिकुमुल्लाहु जमीया, जिधर भी तुम सब होगे, تم سب کو اللہ جمع کر لے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کیا بتایا، بحثوں میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ پڑو. جب تفرقوں والی باتیں عام ہوتی ہیں نا، تو پھر نیکیوں کی دوڑ کم ہو جاتی ہے. آج بھی امت مسلمہ کو اس میں سبق دیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی فقہی باتوں پہ جھگڑے نہ ڈالو. آج آپ کو پتا ہے کہ امت مسلمہ کے جو فرقے ہیں، بنیادی جو مسلمان فرقے ہیں، اسلام سے جو نکل کے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیے کیا کوئی فرقے والا یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ اس پہ کسی امام کا اختلاف ہے دوسرے سے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مانو، پردہ نہ کرو، کبھی آپ نے کبھی سنا؟ اور آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان عالم یا امام ایسی بات کرے گا؟ مسئلے کیا ہے؟ نماز میں ہاتھ اوپر باندھو کہ نیچے باندھو، رفع الیدین ایک دفعہ کرو رکعت میں یا تین دفعہ کرو، سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو نہ پڑھو، یہ فقہی باتیں ہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے درخت کی جڑ، وہ کاٹ دیں گے تو درخت سوکھ جائے گا، ایک ہے اس کی شاخ، تو شاخ کو کاٹ دیں گے درخت کو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت اس کا حسن کم زیادہ ہوگا. تو آج دشمنوں نے مسلمانوں کو جو آپس میں لڑایا نا، وہ عقیدے کی باتوں پہ نہیں لڑایا، فقہ کی باتوں پہ لڑایا. ابھی آپ کے مزاج سے بڑی بات ہے، بس کانوں سے ٹکرا کے آگے چلیں، انشاءاللہ سورہ مائدہ تک پہنچ کے آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا. آج امت مسلمہ میں جو اختلاف ہوتے ہیں اس میں کس بنیاد کے ہیں؟ بس ہر ایک کو اس کے طریقے سے کام کرنے دو، یا ایسے ہی جیسے دین کا کام کرنے والے، کوئی ایک اینگل سے کرتا ہے، کوئی دوسرے سے کرتا ہے، ایک نرمی سے بات کرتا ہے، ایک غصے سے کرتا ہے، ایک راگ لگا لگا کے پورے جلسے میں لوگوں کو جگا دیتا ہے، ایک سافٹ بات کرتا ہے. کرنے دو، لوگوں کے رنگ فرق ہے، پھول فرق ہے، تم جو دوڑ لگاؤ وہ فاستبق الخیرات ہے. زندگی تھوڑی ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، پتہ نہیں کس لمحے زندگی کی شام ہو جائے. اپنے آپ کو ضائع نہ کرو بحثوں میں، جھگڑوں میں پڑ کر ایک کو دوسرے کے خلاف کرنے، اس کو ادھر سے کھینچ ادھر کھینچ کی بجائے کام کرو. جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دو، تم وہ کرو، بات ختم ہو گئی. اب یہ مضمون پورا ہوا، قبلہ تبدیل ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا تھا، کیا دو تین سوالات میں خود اٹھاتی ہوں تاکہ اگلی دو آیتیں آپ سمجھ جائیں. کیا یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور صحابہ کے لیے تھا؟ اس سے یہ لگ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر منہ کرنے والے جو ہیں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں، یا مکہ سے باہر کے لوگ بھی کریں، یا دنیا بھر کے؟ یہ کچھ سوالات تھے جن سب کا جواب اب اگلی آیتوں میں دیا جا رہا ہے. سنیے گا، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی تو نکلے. تین دفعہ یہ آیت آئے گی اب آگے آپ کے پاس، اس لیے یہاں ون لکھ لیجئے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، کون سے سیکھے ہیں؟ واحد کے. اے نبی، جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو پلٹ لیجئے. کدھر؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. تکرار لگ رہی ہے نا، یہ حکم پہلے بھی اوپر گزرا تھا، لیکن اب یہاں اس کا سٹائل تھوڑا فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے سیغوں میں مخاطب کیا گیا کہ آپ جدھر سے بھی نکلیں، بیت اللہ کے اندر ہوں یا بیت اللہ سے باہر ہوں، مکہ شہر میں ہوں یا مکہ سے باہر ہوں، یا دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ چلے جائیں، ہر طرف جہاں بھی ہوں آپ کا منہ بیت اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، آپ اکیلے کا، آپ ادھر منہ کر لے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اشارہ واحد میں کر دیا، بات واضح ہوگی، نمبر ایک. آگے چلیں دوسری دفعہ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کریں. سیم آیت دو دفعہ آگے. آگے چلیے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم سب ہو. یہاں فرق کیا ہے؟ جمع کے سیگے آگے، فولو وجوہکم شطرہو، تو تم سارے بھی پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف. گویا کہ آپ دیکھیے کہ ایک حکم تین دفعہ بیان کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ بہت لمبی چوڑی تفسیریں ہیں، لیکن ساری باتوں کا خلاصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز پڑھیں گے تو بھی بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، صحابہ ساتھ پڑھیں گے تو صحابہ کرام بھی اس طرف منہ پڑھیں کریں گے. تیسری بات، مسجد حرام کی عمارت کے اندر، جو بیت اللہ جس کو آپ کہتے ہیں، مسجد حرام کو حرام کہنے کی وجہ بھی یہ کہ یہاں کچھ چیزیں حرام ہیں، जो बाहर हलाल है, इसके ऊपर कल बात कर दूंगी इंशाल्लाह थोड़ी सी अगर आप चाहेंगे तो, बैतुल्ला की हदूद के अंदर मौजूद है तो भी मुंह किबले की तरफ होगा, बैतुल्ला की हद से निकले जद्दा आ गए, या समझे मक्का की हद के अंदर आ गए, यानी बैतुल्ला दिख नहीं रहा लेकिन मक्का में रहते हैं तो भी इधर ही मुंह करेंगे, और तीसरा यह है कि बैतुल्ला से भी निकले मक्का यानी तनीम की हद से भी निकल गए तो दुनिया का बाहर लंदन, अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिधर भी होंगे सब के मुंह इधर ही होने, ये मुराद है। सफर में, हजर में, फर्ज नमाज में, नफिल नमाज में, जनाजे की नमाज, सलातुल इस्तस्का, हर नमाज में बंदे मोमिन का रुख किबले की तरफ होगा, ये मुराद है इस्तकरार से। क्यों? इसकी वजह फरमाया, ली अल्ला यकून अलिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। ये कौन लोग हैं? यहूद। अब यहां आप अपने जहन को तेज तेज चलाएंगे तो समझ आ जाएगी कि यहूद को गुस्सा तो आ रहा है किबले की तब्दीली के ऊपर, लेकिन उनके दिल गवाही दे रहे हैं ना कि ये नबी सच्चा है, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा था कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किबले की तब्दीली का हुक्म इसलिए दिया है कि यहूद को आपके खिलाफ ये हुज्जत ना मिले कि जी इनको तो बैतुल्ला की तरफ मुंह करना था, ये तो बैतुल मकदस की तरफ कर रहे हैं। कितनों को ये बात समझ आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी किबले की तब्दीली यहूद का मुंह बंद कर रही है कि ये नबी सच्चा है, तभी तो इनको ये हुक्म दिया गया। अब आप कहेंगे इतनी तकरार, इधर मुंह कर लो, वो कर लो, क्या बड़ी बात थी? तो यहां नोट कीजिएगा कि नसख यानी एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म लाना, नासिख और मंसूख जिसको पीछे पड़ चुके, ये उसका पहला मौका था। किताब में तो आ गया था हुक्म कि हम कुछ हुक्मों को बदल देते हैं, कुछ को छोड़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये पहली थी। और जब एक चीज निकाल के दूसरी रखी जाती है ना तो शोर उठता है। जैसे आप इधर हैं, कल से हम कहें कि ऐसा करते हैं कि क्लास उधर कर लेते हैं, तो शोर उठेगा ना। तब्दीली लोगों को कभी पसंद नहीं होती, यही इशारा है इसमें। हाँ मगर इल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर कुछ लोग ऐसे जालिम हैं, यानी वो इस निशानी को देख के भी खुश नहीं है, हालांकि ये निशानी पॉजिटिव वे में करें क्या। फला तख्शौहुम, आप उनसे मत डरिए, वख्शौनी मुझसे डरिए, क्यों? वली उतिम नेमती अलैकुम, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दूं। क्या नेमत थी दे पूरी होनी? किबले की तब्दीली। किबले की तब्दीली के साथ नबी सल्लम पर नेमत इस्लाम पूरी हुई, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी। लोगों का डर, किन लोगों का डर? वो रिएक्शन का डर जो सयकूल उस सुफहाओ मिन नास में आ गया, यानी पीयर प्रेशर में आकर आप किबला वापस दूसरी तरफ ना कर लें, ये मुराद है। मेरा खौफ रखे, मेरी तरफ रहे, जिस तरह मैंने आज किबले की तब्दीली का हुक्म आप पे साबित कर दिया, इसी तरह अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन भी आप पे पूरा करूंगा। वक्त के साथ वो सारी नेमतें उम्मत मुहम्मदी आपको मिलती जाएंगी जो कल तक दूसरों को मिली थी, और वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पाओ, हिदायत पे आओ। यकीन करें ये तर्जमे के एतबार से मुश्किल तरीन आयतें हैं सूरह बकरा की, आगे भी एक आएगी आयत बड़ी मुश्किल है। अगर आप साथ साथ इस आयत को एंजॉय नहीं कर रहे तो आप लॉस्ट हैं, अभी लॉस्ट होंगे, घर जाके दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे, ये तफसीर के वक्त आयतों पे नजर रखेंगे तो समझ आ जाएंगी, वरना तर्जमा कहीं पड़ा होगा, तफसीर कहीं होगी और आपको मजमून समझ आ चुका होगा। तो यहाँ क्या बात बता दी कि लोगों के डर की बजाय बात जो है वो अल्लाह की मानो। हम सब के लिए भी इसमें यही सबक है कि अल्लाह का कोई हुक्म मानकर लोग हमसे खुश हैं कि नहीं, तारीफ करें कि तनकीद करें, छोड़ें या अपनाएं, सब बराबर है। चलते जाइए, अल्लाह की नेमत इस्लाम, नेमत हिदायत आप पे पूरी भी होगी, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला आपको सिबगत अल्लाह के अंदर इस तरह से जमा देगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ हो गया। अब ये किबले की तब्दीली पूरी हुई, उम्मत मुस्लिमा को एक कॉर्नर मिला, उम्मत वसत बनी, तो अल्लाह ताला आखिर में एक और नेमत की तरफ इशारा करते हैं, कमार सलना फीकुम रसूलन, जैसे कि हमने आपके दरमियान एक रसूल भेजा। अब मेरा सवाल है आपसे, कमा से क्या मुराद है? पीछे भी तो कमा कहा ना, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनहुम, यहां कमा से मुराद किबले की तब्दीली है कि लोगों, किबले की तब्दीली जो तुम्हें हुक्म दिया, ये कोई पहला एहसान नहीं किया उम्मत मुस्लिमा पे, इससे पहले एक और एहसान भी तो कर चुका, और वो क्या कि अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, मैंने तुम्हारे अंदर एक रसूल भी तो भेजा। क्या करता है, यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ता है, वा युज़क्कीकुम और तुम्हारा तज़किया करता है, वा युअल्लिमुकुम और तुमको सिखाता है, अल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत, वा युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून और तुम्हें वो सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। आपको ये अल्फाज पढ़कर कोई याद आया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल ठीक। रब्बना वबस फीहिम रसूला मिनहुम, 4,000 साल पहले की मांगी हुई दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में पूरी हुई। अल्लाह ताला कह रहे हैं, उम्मते मोहम्मदिया, तुम पर एक एहसान मैं पहले भी कर चुका हूँ, और वो क्या कि दुआए खलील को पूरा किया और तुम्हारे पास अरबों में तुम्हारे पास ही एक रसूल भेज दिया। यही आयत आप आगे सूरत सफ में भी पढ़ेंगे, सूरत तौबा में भी पढ़ेंगे, गालिबन सूरत जुम्मा में भी पढ़ेंगे। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ने मुसलमानों को एक लीडर दिया। याद रखिए कि रसूल का आना, एक लीडर का मिलना एक कौम के ऊपर अल्लाह ताला का एहसान होता है। किबले की तब्दीली कौन बताएगा? लीडर बताएगा ना। आप यहाँ अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उस्ताद समझें, प्रैक्टिकली वो सारे काम करके दिखा रहे थे ना जो किताब में लिखे थे। आप सोचिए कि किताब उतर जाती जिब्राइल के जरिए डायरेक्ट हर घर में, मक्का में पहुंच जाते उसके नुस्खे, कितने लोग पढ़ते? कोई किबला तब्दील करता? कहना ये मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे उस्ताद खुद मौजूद हो ना, तो कोई बात कहे तो सब कहते हैं ठीक है, और अगर उसकी बात कन्वे करवा दी जाए या लिखी हुई दे जाए तो कई लोग कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो तरीका मुमकिन नहीं है। तो गोया कि यहाँ एक बहुत बड़ी रहमत है, और वो क्या कि उम्मते मुस्लिमा, हमने तुमको एक रसूल दिया। अच्छा, ये मज़े की बात देखिए कि अल्लाह ताला ने इस एहसान को जतलाया भी है। सूरह आले इमरान आयत 164 में आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, लकद मन अल्लाह अलल मोमिनीन, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि जब उनमें ही एक ऐसा पैगंबर भेजा जो इसकी आयात इनको सुनाता है, इनका तज़किया करता है और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले ये लोग गुमराहियों में पड़े हुए थे। तो क्या पता चला कि एक बंदे को किताब मिल जाए ये भी बड़ी नेमत है, लेकिन किताब पढ़ाने वाला मिले ये उससे बड़ी नेमत है। रसूल इंसान को ये भी बताते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, नेकी कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, रसूल के सिवा कोई नहीं बता सकता। आज ला इलाहा इल्लल्लाह हम कहते हैं, इलाह कौन है, कौन बताएगा? पत्थर का बुत इलाह है, पीपल का पत्ता इलाह है, किसने बताया? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, रसूल के जरिए पता चला। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि अगर किसी को कोई ऐसा बड़ा मिल जाए कि जो उसको ये सब कुछ सिखाए। एक छोटा सा नुक्ता है जो अभी आप नोट नहीं करेंगे लेकिन आप लिख लीजिए तो बाद में जाके देखिएगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी थी ना तो तरतीब फर्क थी, ढूंढ के आइएगा। यहां क्या बात है, युज़क्कीहिम को पहले कर दिया यतलू अलैहिम आयातिही के बाद, वहां क्या था, यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, फर्क है दोनों में। तरतीब को देखें तो यहाँ आयतों का पढ़ना यानी सिर्फ तिलावत करने के साथ ही तज़किये का अमल शुरू हो गया, जबकि इब्राहिम ने कहा था कि पहले वो इनको कुरान पढ़ना सिखाए, इनकी तजवीद ठीक करे, फिर इनको कुरान की तालीम दे यानी तफसीर करवाए, फिर हिकमत यानी हदीस सिखाए, फिर इनका तज़किया करे। इब्राहिम की दुआ थी, अल्लाह ने उस दुआ को करेक्ट किया कि नहीं, ये सारे सफर के साथ साथ सबसे पहले कुरान की तालीम के साथ से भी पहले तज़किये का अमल शुरू हो जाएगा। यानी इसमें बारीक बात है कि कुरान के पढ़ने से, कुरान के हाथ में आने से ही तज़किया हो जाता है। तज़किया बिल्कुल एक पौधे की तरह, इस पर हमारी पूरी सीरीज है प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, आप उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर सुन लें, बहुत कुछ उसमें मिलेगा कि जैसे पौधे उगते हैं ना उसी तरह तज़किये का अमल होता है। कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं और साथ साथ बुरी बुरी चीज़ें निकालनी होती हैं। तज़किया ड्यूल एक्शन है, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लाना और बुरी आदत को निकालना। यहाँ आप कुरान पढ़ते रहे 4 घंटे और रात को आप गंदी चीज़ें देखते रहे तो तज़किया नहीं होगा। अच्छी चीज़ें लाएंगे और बुरी चीज़ें निकालेंगे तो तज़किया होगा। सबसे पहले सोच का तज़किया होता है, बंदे की सोच बदलती है, गुनाह और नेकी का फ़र्क पता चलता है। यहाँ आने से पहले तो मैं ये भी नहीं पता था कि ये गुनाह, वो अच्छा इट्स सिन, हमें तो नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता अब आपको लग रहा है ये भी गुनाह ये भी गलत, बस तज़किया शुरू हो गया। कुरान पढ़ने के दौरान जो अल्लिमुल किताब वल हिकमा में आखिर में आप देखेंगे कि नज़र का तज़किया, आंखों का तज़किया, जुबान का, हाथों का, हत्ता के बंदे को फिर खौफ आता है किसी गलत चीज़ की तरफ देखते हुए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काम करने वाले पहले गुमराहियों में थे, तो अब शुक्र करें कि अल्लाह ने उनका रास्ता खोल दिया। और इस आयत पे आगे जाके बहुत दफ़ा बात होनी है, इसलिए हम इस पे इतनी बात करके आखिरी आयत पे आते हैं। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस तुम मुझको याद रखो, मेरा जिक्र करो मैं तुमको याद रखूँगा। वश्कुरू ली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरा कुफ्र ना करो। ये फ़ा क्या है? बहुत बड़ी बात है इसमें। अगर आप इसको लिखिए फ़ा प्लस अज़कुरूनी या उज़कुरूनी, तो फा का मानी है तो, अत्फ की वा है, जैसे और होता है ना वाओ की सूरत में, और तुम मुझको याद करो, ये मतलब है। तो क्या मतलब है फा से मुराद क्या है? ऊपर के ये चारों काम करो, कुरान की तालीम, इल्म, ये सब कुछ चार काम जो आपने नबी की सूरत में यहाँ देख लिए, जिसमें किताब की तिलावत, तज़किया, तालीम और हिकमत, ये चार काम करके फ़ज़कुरूनी फिर मुझको याद करो। यहाँ आपको जिक्र अस्कार करने का एक नया एंगल समझाया जा रहा है कि जिसने ये चार काम कर लिए फिर अल्लाह उसको याद करेगा। हमारे यहाँ जिक्र का अमूमी तौर पे क्या तरीका है? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अंधेरे कमरे में पानी का प्याला सामने रख के हाथ उसमें डुबो के और जिक्र करो। देखिए अगर तो अल्लाह के नबी ने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है। और तरीका क्या देखा गया? अंधेरे कर दो, शम्मे गुल कर दो और अंधेरे में वजद में आ जाओ। यहां से आपको जिक्र का असल तरीका पता चला कि जिक्र की ये चार किस्में हैं। कौन सी? कुरान का पढ़ना, कुरान का समझना, इसके साथ रोशनी में अपना तज़किया करना और साथ साथ हदीस का इल्म, ये है जिक्र। कुरान को जिक्र कहा गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सूरह हिजर की आयत गालिबन अगर मैं गलती ना खाऊं, कि हमने इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसको करने वाले हैं। तो गोया कि यहाँ बता गया कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इतनी बड़ी बात है, खाकी ज़र्रे को अल्लाह अपने बराबर ला रहा है। तुम मुझे याद करो मैं तुमको करूँगा। एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे पता चल जाता है कि अल्लाह मुझे कब याद करता है। दूसरों ने कहा भाई ये कैसे, तुम इतने पहुंचे हुए हो कि तुम्हें पता चल जाता है कि अल्लाह मुझे याद कर रहा है। कहा हाँ, कब? जब मैं उसको याद करता हूँ। मैं अल्लाह को याद करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे याद करता है, इतात के मानों में। देखिए जिक्र के मुख्तलिफ दर्जे हैं, लिख लीजिए, सिर्फ नाम लिख लें, कल इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी अगर ज़रूरत महसूस हुई तो बात करेंगे। जिक्र का मानी कुरान पाक में इतात के मानों में आया, तुम मेरी इताअत करो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, यानी तुम मेरे दीन के ऊपर अमल करो। दूसरा जिक्र होता है जिक्र बिल लिसान, जुबान से जिक्र करना, सूरत अल आराफ आयत 205 में आता है। तीसरा होता है जिक्र बिल कल्ब, दिल से जिक्र करना, सूरत आल इमरान आयत 135 है, तर्जमा आप खुद लिखिएगा जाके। चौथा जिक्र है कमानी तस्करा, जैसे उर्दू में कहते हैं ना आपका तस्करा हो रहा था, इसकी दलील सूरत मरियम आयत 41 में, नोट कीजिएगा जाके। पांचवा हिफ्स, किसी चीज को हिफ्स करना, निगेबानी, हिफाजत के मानों में, सूरत अल अराफ आयत 171 इसमें इसकी दलील है। छठा लफ्ज जिक्र नसीहत के मानों में इस्तेमाल होता है, सूरत कौफ आयत 45 इसकी दलील है। फिर सातवां है जिक्र बामानी शर्फ, इज्जत के मानों में, शर्फ दिया आपको, इज्जत दी, सूरत अल अंबिया आयत 10 इसकी दलील है, बल्कि सूरत अल अंबिया की चेक कर लीजिएगा आयत नंबर 10 ही है खुफुली। फिर जिक्र बमानी खबर, इत्तला देने के मानों में, सूरत कहफ आयत 83। जिक्र बमानी वही, वही के मानों में ये नौवां मानी है और इसका रेफरेंस सूरत सवाफात आयत 3 में। और जिक्र बमानी कुरान, सूरत अल अंबिया आयत 50। और जिक्र बमानी सलात, نماز کے معنوں میں سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 اور سورۃ نور آیت نمبر 37. اب بتائیے ذرا کتنے معنی ذکر کے آپ نے نوٹ کیے؟ 11. آپ سب اس کو ذکر کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں ذکر اذکار کیا ہے؟ تسبیح پہ ہاتھ پہ رکھنا. تو ان سب کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. فرمائے واشکرو لی, اور میرا شکر کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کس بات پہ شکر کرو؟ ٹیکسٹ کے اعتبار سے ویسے تو ہر بات پہ شکر, یہاں شکر کس بات کا کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں انسان بنایا, اللہ کی مرضی سکھائی, ہمیں نفس کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈالا, نیکی کب کرنی, کتنی کرنی, کیا کرنی, یہ سب سکھا دیا. اس بات پہ شکر کرو کہ جس نے ہمیں ہوا سے نکال کر ہدن کی طرف ڈال دیا. ہم تو کئی ایسے کام کر رہے تھے ثواب کے طور پہ جن کو اللہ جانتا بھی نہیں, حالانکہ ثواب وہ کام ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ راضی ہو, گناہ وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھا دے گا. ہم سب بھی قرآن کی اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر کریں گے ہماری نعمت بڑھے گی. میں آپ سب کو ایک نصیحت کروں گی, دن رات کا کوئی وقت چوز کر کے جب بالکل آپ فوکس ہوں, اکیلے ہوں, چاہے گاڑی میں جاتے ہوئے راستے میں یا بستر پہ رات کو لیٹیں کھانا پکاتے ہوئے, پورے دل اور دماغ سے جتنی دفعہ بغیر گنیں, کوئی وظیفہ نہیں باندھ رہی, لیکن اپنے اس قرآن کی نعمت کو ذہن میں رکھ کے الحمدللہ الحمدللہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الابراہیم میں کہتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں نعمت بڑھاؤں گا, اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم کفر کرو گے نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے. وَلَا تَكْفُرُونِ, میری نہ شکریہ نہ کرو, نہ شکری کیا ہے کہ اس نعمت کو چھوڑ کر انسان اس سے کمزور اور حقیر چیزوں کے پیچھے لگ جائے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق, ایک قسم کا ہم نے اس کو ایک ربط میں رکھا ہے. کچھ چیزیں اس کی سائٹس کی ہیں جو انشاءاللہ ہم اپنے ڈسکشن میں کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہم سب کے دل میں بیٹھ جائیں.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون